आञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्व। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्कयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्य भगवान् व्रजेशतनयः तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हमें आश्चर्य लग रहा है कि ये स्वाइन फ्लू की इतनी खबर सुनने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त उपस्थित हुए हैं। ये एक प्रमाण है कि श्री कृष्ण स्वाइन फ्लू से ज्यादा शक्तिशाली है। दुनिया में स्वाइन फ्लू आएंगे और जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण रहेंगे। रामायण में ब्रह्मदेव वाल्मीकि मुनि से कहते हैं कि हे वाल्मीकि, तुम जो भगवान श्री रामचंद्र की लीलाओं का वर्णन करोगे इस रामायण ग्रंथ में, ये ग्रंथ और ये लीलाएं सदैव विद्यमान रहेंगी इस भौतिक सृष्टि में। जब तक बच्चे रोते होंगे इस दुनिया में, जब तक पहाड़ होंगे, जब तक नदियां होंगी, जब तक समुद्र होंगे, तब तक तुम्हारे द्वारा विरचित ये रामायण की कथा प्रचलित होगी, ये विद्यमान होगी और घर घर में गाई जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की कथा, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ये सदैव रहेंगी। सृष्टि का सृजन होगा, पालन होता है और उसका विनाश भी होगा, पुनः सृजन होता है, पुनः विनाश होता है। ऐसे अनादि काल से संसार का चक्र चलते आया है। कितने बड़े बड़े राजा आए और गए, कितने बड़ी बड़ी बीमारियां आई और गईं, परंतु श्री कृष्ण रहे। आपको क्या लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? क्या यह स्वाइन फ्लू है? क्या टीबी है, कॉलेरा है? कौन सी सबसे बड़ी बीमारी है? श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित कहते हैं, सबसे बड़ा जो रोग इस भौतिक जगत में है उसे भव रोग कहते हैं। भव, भव अर्थात ये संसार, जिसमें कि बारंबार एक प्राणी को जन्म लेना पड़ता है, बीमार होना पड़ता है, बूढ़ा होना पड़ता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होना होता है। ये बारंबार जन्म मृत्यु का चक्र है, इसे संसार कहते हैं। और ऐसे संसार चक्र के द्वारा व्यक्ति बारंबार ऐसे प्रतिकूल और कष्टप्रद परिस्थिति में डाला जाता है जो वो नहीं चाहता है। कौन चाहता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊं? कौन चाहता है कि मैं बीमार हो जाऊं? कौन चाहता है कि मैं मर जाऊं? परंतु ये दुनिया का सत्य है, दुनिया का नियम है कि ये सब होने ही होने हैं। तो ऐसे पुनर्जन्म लेने के कारण, ऐसे एक और एक भौतिक शरीर स्वीकार करने के कारण जितने भी शरीर के कष्ट हैं वो हमें बार बार भुगतने पड़ते हैं। इसलिए राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत में इस भव रोग को सबसे बड़ा रोग कहते हैं। श्रीमद् भागवत में कभी भी सुखदेव गोस्वामी या राजा परीक्षित ऐसे नहीं कहते हैं कि कॉलरा या टीबी सबसे बड़ी बीमारी है। नहीं, सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हम भगवान श्री कृष्ण को भूल चुके हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जितने भी जीव हैं इस भौतिक सृष्टि में, हरे राम 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 हरे हरे, तो जितने भी ये जीव हैं भौतिक सृष्टि में वो इस बात को भूल चुके हैं कि वो मेरे अंश हैं और मैं पूर्ण हूँ। अंश का कर्तव्य होता है पूर्ण की सेवा करना, परंतु इस तथ्य को भूलकर वो यहाँ पर भौतिक सृष्टि में आए हैं और यहाँ के कड़े नियमों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष को संसार कहते हैं। तो यदि केवल हम भगवान कृष्ण का स्मरण पुनः करें, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें, उनकी भक्ति करें, तो सहज ही हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होकर भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा, जिस धाम की प्राप्ति करने से पुनर्जन्म हमें नहीं लेना पड़ेगा। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। श्री कृष्ण भगवत गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे प्राप्त होता है, माम उपेत्य तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति मुझे प्राप्त होता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है, न आपनुवंती महात्मानः संसिद्धिर परमाम गताः, और वो मेरे धाम को प्राप्त होता है जो कि परम संसिद्धि है, जीवन का लक्ष्य है, सर्वोच्च प्राप्ति जीवन की है भगवान के उस धाम को प्राप्त करना। तो हम भगवान को भूल चुके हैं, ये सबसे बड़ी बीमारी है, ये मूल कारण है हमारे सारे समस्याओं का। और रामबाण उपाय समस्त समस्याओं का समाधान करने के लिए है भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप के प्रति आकर्षित होना, उनके पवित्र नामों का उच्चारण करना, उनकी सेवा करना, उनके आदेश का पालन करना, उनकी कथाओं को सुनना, उनकी लीलाओं को सुनना, उनके सुंदर रूप का दर्शन करना, ये सब रास्ते हैं परम सिद्धि के प्राप्ति के लिए। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण का रूप कितना सुंदर है, ये इस दुनिया का रूप नहीं है। यहाँ लोग दुनिया के सौंदर्य से बहुत आकर्षित होते हैं और सोचते हैं कि यही सौंदर्य को प्राप्त करना और इसका भोग करना यही जीवन की सफलता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं इस भौतिक सृष्टि में अपने मूल रूप के साथ और हम सबको दिखाना चाहते हैं कि देखो इस संसार के सौंदर्य से भ्रमित नहीं होना, सच्चा सौंदर्य तो मेरे जगत का है, मेरे धाम का है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने सुंदर रूप को प्रदर्शित करके हम सबको उनके चरण कमलों के प्रति आकृष्ट करना चाहते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का आज जन्म दिवस है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ दिवस है आज, और इस दिन पर हमें एक संकल्प करना चाहिए कि भगवान कृष्ण की कृपा से हमें एक भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है, इस भौतिक शरीर की प्राप्ति केवल भगवान की कृपा से हुई है और भगवान की भक्ति करने के लिए मिली है। यदि हमने भगवान की भक्ति नहीं की तो संसार में हमने जो भी कुछ क्यों न प्राप्त किया वो व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु के समय हमें इन सारी चीजों को यहीं पर छोड़ के जाना पड़ेगा, हमारे एक पैसा नहीं साथ में ले जा पाएंगे, स्वाइन फ्लू भी नहीं ले जा पाएंगे, परंतु भगवान की भक्ति साथ में ले जा पाएंगे। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति अल्प मात्र थोड़ी सी मेरी भक्ति यदि करता है तो अवश्य सबसे बड़े भय से वो मुक्त हो सकता है, सही समय पर अपने भक्ति में परिपक्व होने के बाद वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण अपने संदेश को हम तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए हैं। उन्होंने जो भगवत गीता में घोषणा की आप सब जानते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं परित्राणाय साधूनां, मैं भक्तों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और आता हूँ समय समय पर, दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रकट होता हूँ और सद्धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। संभवामि युगे युगे। तो भगवान को यदि किसी बड़े असुर का वध करना है, किसी बड़े राक्षस का, किसी बड़े दुष्ट व्यक्ति का वध करना है तो उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है, बड़े आसानी से केवल अपने भौतिक प्रकृति के द्वारा वो ऐसा कर सकते हैं। आप सब ने राजा अकबर और उनके मंत्री बीरबल का नाम अवश्य सुना होगा। एक बार राजा अकबर ने बीरबल से कहा कि अरे बीरबल, तुम्हारे जो भगवान हैं वो गीता में कहते हैं कि वो भक्तों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर प्रकट होते हैं धरती पर, तो क्या तुम्हारे भगवान इतने शक्तिशाली नहीं है कि वहीं अपने धाम में बैठकर भक्तों की रक्षा करे? क्या उनको यहाँ धरती पर आकर भक्तों की रक्षा करनी पड़ती है? तो बीरबल बहुत समझदार थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने राजा अकबर से कहा कि बादशाह, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं ठीक समय पर दूंगा। तो हुआ ये कि एक दिन बादशाह अकबर अपने छोटे से बच्चे को लेकर नौका विहार करना चाहते थे यमुना जी में, तो बीरबल को भी साथ में लेकर गए और दूसरे नौके में उनके सिपाही आदि भी थे। और जैसे जैसे वो नौके में जा रहे थे तो अकबर और बीरबल अपने बातचीत में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने नहीं देखा कि राजकुमार, जो कि बहुत छोटा था, वो पानी में खेलते खेलते अचानक गिर पड़ा जल के भीतर। तो जैसे ही बादशाह अकबर ने देखा, तुरंत वो कूद पड़े पानी में, कूद कर बच्चे को उठाया, नौके के अंदर डाल दिया और नौके में आकर कहने लगा कि देखो बीरबल, तुम्हारे भगवान और हमारे भगवान जो भी हो, लेकिन उन्होंने इनको बचाया। तो फिर बीरबल ने कहा कि बादशाह, मुझे आपसे प्रश्न करना है। हाँ करो। देखो, आप तो सारे हिंदुस्तान के बादशाह हैं और आपके पास इतनी बड़ी सेना है, पास वाले नौके में इतने आपके सिपाही चल रहे हैं, आपके सेनापति भी हैं वहां पर, तो जब आपका लड़का इस पानी में गिर गया तो सेनापति को जाना चाहिए था, किसी सैनिक को जाना चाहिए था, आप तो बादशाह हैं, आप क्यों चले गए, आप क्यों कूद पड़े इस पानी के भीतर? तो राजा अकबर ने कहा, ये तो स्वाभाविक है, ये तो मेरा बच्चा है, मैं उससे प्रेम करता हूं, इसलिए तुरंत मैं कूद पड़ा। फिर राजा बीरबल ने कहा कि हे बादशाह, आपको याद है आपने थोड़े दिन पहले मुझसे प्रश्न किया था। क्या प्रश्न था वो? कि तुम्हारे भगवान को अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए क्या अपने वैकुंठ धाम से उतर के यहाँ आना पड़ता है? क्या वो इतने समर्थ नहीं है कि वहीं बैठे बैठे वो भक्तों की रक्षा यहाँ पर कर पाए? तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। अकबर भी बड़े बुद्धिमान थे, समझ गए, हाँ बीरबल, तुमने उत्तर बहुत सही दिया है। तात्पर्य क्या है इस बात का? तात्पर्य ये है कि भगवान को यदि अपने भक्तों की रक्षा करनी है तो वास्तव में कोई कठिनाई नहीं है भगवान के लिए, परंतु जो भक्त होते हैं भगवान के, वो भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या जो भक्त नहीं है वो भगवान के प्रिय नहीं होते? अवश्य होते हैं। इसके लिए एक साधारण उदाहरण आपको देते हैं। यदि एक घर में चार पांच बच्चे हैं तो जो माता पिता हैं वो सबके प्रति समान प्रेम करते हैं, परंतु जो सबसे छोटा बच्चा होता है, जो बिल्कुल निस्सहाय होता है, जो अपने बल पर अपने बुद्धि पर काम नहीं कर सकता, अभी तक बहुत छोटा है, वो पूरी तरह से अपने माता और पिता के ऊपर निर्भर है, माता पिता का ध्यान ज्यादा उस बच्चे की ओर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता अन्य बच्चों से प्रेम नहीं करते हैं, परंतु अन्य बच्चे बड़े हो गए, वो अपने जिंदगी अपने आप संभाल रहे हैं, परंतु ये बच्चा निस्सहाय है, निर्भर है पूरी तरह से भगवान के, अपने माता पिता के ऊपर, इसलिए माता पिता ज्यादा ध्यान देते हैं उसकी। ठीक उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस संसार के झूठे आश्रय को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के सत्य श्री चरणों का आश्रय लेते हैं निस्सहाय भाव से। और फिर भगवान सोचते हैं कि जब इस भक्त ने मेरा आश्रय ग्रहण किया है, अन्य समस्त आश्रयों को त्याग कर और मैंने भगवद गीता में वचन दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि हे अर्जुन समस्त धर्मों को त्याग दो और मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, डरो नहीं, तो मुझे वचनबद्ध होकर मेरे भक्त की रक्षा करनी चाहिए। तो इसलिए भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, और जब यहाँ पृथ्वी में आते हैं इस कारण से, जब आए हैं तो दुष्टों का विनाश भी करके चले जाते हैं, जब आए हैं तो धर्म के बारे में कुछ कह के भी चले जाते हैं, परंतु ये उनके महत्वपूर्ण उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। भगवान भक्तवत्सल हैं, अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उनके आने का मुख्य कारण उनके भक्तों की भलाई है, और वो अन्यों को भी अपना भक्त बनाना चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं, इसलिए आके ऐसे सुंदर रूप को प्रकट करते हैं। और जैसे उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया गीता का, वो इस गीता का उपदेश हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने केवल एक बार प्रकट होके हमारे उद्धार का प्रयास नहीं किया, समय समय पर भगवान आते रहे हैं, संभवामी युगे युगे, ऐसे उन्होंने अनेक अवतार स्वीकार किए। इस अवतार का नाम तो आपको पता होगा, ये है वामन अवतार। भगवान श्री कृष्ण ने एक बटु ब्रह्मचारी का रूप धारण किया, बलि महाराज के दरबार में गए और वहां जाकर बलि महाराज के ऊपर कृपा की, 3 कदम भूमि का दान मांगा। बलि महाराज ने कहा कि अरे ब्राह्मण, तुम बड़े मूर्ख हो, तुम्हें पता भी नहीं कि जब बड़े आदमी के पास आते हो तो कैसा दान मांगना चाहिए। एक राजा के पास आते हो और 3 कदम जमीन भिक्षा मांगते हो, जब राजा के पास आओगे कोई बड़ी चीज मांगनी चाहिए। परंतु वामन देव ने कहा कि हे राजन, जो व्यक्ति उसके पास इस समय जो है उससे वो संतुष्ट नहीं होगा तो उसे सारा संसार भी मिल जाए तो फिर भी वो संतुष्ट नहीं होगा, इसलिए अब मेरे पास जो है उससे मैं काफी संतुष्ट हूँ, मुझे और बड़ी चीजों की कामना नहीं है। तो फिर राजा ने कहा तथास्तु। तो फिर बलि महाराज, वामन देव ने अपना पहला कदम लिया, पहले कदम से स्वर्गलोक तक नाप लिया, दूसरे कदम से सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, तीसरे कदम रखने के लिए कोई स्थान नहीं था, और वामन देव ने अपना रूप इतना विराट कर दिया था कि ब्रह्मांड के समान विराट हो गया था, और तीसरे कदम रखने के लिए जब जगह नहीं था तो वामन देव ने बलि महाराज की ओर देखा, कहा कि हे राजन, आपने मुझे वचन दिया था कि आप 3 कदम जमीन मुझे दोगे, मैंने तो केवल 2 कदम जमीन लिए हैं, तीसरा कदम मैं कहाँ रखूं? तो बलि महाराज कहने लगे, मैं हार गया प्रभु, अब आपका 3रा कदम मेरे सर पे रखो। और बलि और वामन देव ने अपने चरण कमल बलि महाराज के सर पे रखे और बलि महाराज का उद्धार हो गया। बलि महाराज के शरणागति से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान इतने ऋणी हुए बलि महाराज के त्याग और उनके शरणागति के लिए कि स्वयं वो बलि महाराज के द्वारपाल बने हैं और आज भी वो बलि महाराज के सुतल लोक की रक्षा कर रहे हैं। इनको तो आप जानते ही हैं, नरसिंह देव। जब उन्होंने देखा कि मेरे मासूम 5 वर्ष के भक्त प्रहलाद के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं ये दुष्ट हिरण्यकश्यप, जो कि उस बालक के पिता हैं, और पिता को चाहिए कि अपने बेटे का देखभाल करे, लाड प्यार करे, परंतु ये पिता विचित्र पिता है कि अपने बच्चे की हत्या करना चाहता है क्योंकि ये मेरा भक्त है। तो नरसिंह देव भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मुझे कोई मनुष्य नहीं मारे, कोई पशु नहीं मारे, मुझे घर के अंदर नहीं मारा जाए, घर के बाहर नहीं मारा जाए, जमीन में नहीं, आसमान में नहीं, पानी में नहीं, मुझे न तो हाथ से मारा जाए, न किसी अस्त्र से मारा जाए, मुझे न दिन को मारा जाए, न रात को मारा जाए, ऐसे अनेक शर्तों को रखा। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी तथास्तु तथास्तु कहते गए, परंतु हिरण्यकश्यप से ज्यादा बुद्धिमान थे भगवान। उन्होंने एक ऐसा रूप धारण किया और इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का वध किया कि उन्होंने ब्रह्मा जी के वरदान को भंग नहीं किया। ब्रह्मा जी का मान रखते हुए हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। उन्होंने न एक मनुष्य न एक पशु का शरीर धारण किया, बल्कि आधा पशु आधा मनुष्य, नर हरि, नर सिंह, आधा नर आधा सिंह। और वो खंभे से प्रकट हुए। जब प्रहलाद महाराज खंभे की ओर देख रहे थे कि नरसिंह देव इस खंभे के भीतर प्रकट हो गए हैं, तो हिरण्यकश्यप ने गुस्से होकर कहा कि अरे क्या तुम्हारे भगवान इस खंभे में हैं? प्रहलाद ने कहा अवश्य है। और जब मुक्का प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने उस खंभे के ऊपर, भगवान ने उस खंभे को तोड़कर बाहर आकर हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करके, जब ठीक सायंकाल का समय हुआ था, सूर्योदय का समय जो कि न दिन होता है न रात होती है, उन्होंने दरवाजे पे जाके जो न अंदर होता है न बाहर होता है, अपने गोदी में बिठाया, सुलाया हिरण्यकश्यप को, जो न जमीन है न आसमान है, और अपने नाखूनों से उसके वक्षस्थल को फाड़ डाला। उनके वक्षस्थल न हाथ है न अस्त्र है। इस प्रकार से बड़े बुद्धिमान भगवान ने नरसिंह देव का रूप धारण करके प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप का वध किया। एक बार भगवान ने शुकर का रूप धारण किया, इनको वराह देव कहते हैं। जबकि पृथ्वी माता बड़ी चिंतित थी, पृथ्वी लोक अपनी कक्षा से गिरकर इस ब्रह्मांड के नीचे गर्भोदक सागर में गिर पड़ा था। जब भगवान ने एक वराह का रूप धारण किया और पृथ्वी लोक को ऊपर उठाया और हिरण्यकश्यप के जो भाई थे हिरण्याक्ष, उनका वध किया। तो जितने अवतार हैं, अनगिनत अवतार हैं, वो सब वास्तव में श्री कृष्ण के अंश हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है। एते चांस कलह पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि अन्य जितने भी रूप हैं वो सब अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। वो अवतारी हैं जिनसे विभिन्न अवतार प्रकट होते हैं। तो यहाँ आपने जितने भी अवतारों का चित्र आप जो देख रहे हैं अवश्य आप पहचान रहे होंगे। सबसे ऊपर है मत्स्य अवतार, जब भगवान ने मछली का रूप लिया था। हमें याद रखना चाहिए कि जब भगवान मछली का रूप लेते हैं तो वो मछली नहीं बन जाते, वो भगवान ही रहते हैं, केवल मछली का रूप स्वीकार करते हैं, लेकिन वो रूप पूरी तरह से भगवान की शक्ति से संपन्न होता है, क्योंकि वो स्वयं भगवान होते हैं। और साथ में उसके बाद उन्होंने कूर्म रूप, कूर्म अवतार स्वीकार किया, एक कछुए का रूप धारण किया और मंदर पर्वत को अपने पीठ के ऊपर रख के समुद्र मंथन में उन्होंने सहायता की, जिससे कि देवता और असुरगण अमृत को निकालना चाहते थे। फिर वराह देव का अवतार, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। फिर नरसिंह देव नीचे हैं, फिर देखिए वामन देव अपना दूसरा कदम ले रहे हैं और सारे ब्रह्मांड को नाप रहे हैं। उसके बाद भगवान के परशुराम अवतार हैं, जिन्होंने दुष्ट क्षत्रियों का वध कर दिया। उसके बाद हैं श्री राम, जिन्होंने कि वनवास में जाकर फिर लंका आगे चले गए, वहां दुष्ट रावण की हत्या की और वापस आकर अयोध्या में राम राज्य की स्थापना की। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आज का दुर्भाग्य ये है कि हम राम राज्य की तरह परिस्थिति चाहते हैं हमारे सृष्टि में, हमारे जगत में। राम राज्य चाहते हैं परंतु राम को नहीं चाहते, राम के बिना राम राज्य चाहते हैं, भगवान के बिना भगवान का धाम चाहते हैं, भगवान के बिना सुख और शांति चाहते हैं। ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। एक आदर्श मनुष्य को कैसे होना चाहिए वो सिखलाने के लिए भगवान ने श्री राम का रूप धारण किया। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम भी श्री कृष्ण के साथ प्रकट हुए। ऊपर हैं बुद्ध और उनके ऊपर हैं कल्कि। ये कल्कि अवतार कलयुग के अंत में प्रकट होने वाले हैं और जितने भी दुष्ट हैं उन सब का वध करने वाले हैं। कल्कि अवतार को आने के लिए अभी केवल 4 लाख साल बाकी हैं, तो उनकी प्रतीक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। इसी जीवन को हमें सफल बनाना चाहिए और इस जीवन के अंत में हमें भगवान के धाम में लौट के जाना चाहिए और पुनर्जन्म नहीं लेना चाहिए। तो इस सुंदर चित्र से हम देख सकते हैं कि भगवान के अवतार अनगिनत हैं। जिस प्रकार से समुद्र में लहरें हैं जो अनगिनत हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान के अवतार असंख्य हैं। इनकी गणना हम नहीं कर सकते हैं, परंतु देखिए जितने भी विस्तार हैं, जितने भी रूप हैं भगवान के, वो अंश माने जाते हैं। और जो अंशी होते हैं, जिनसे कि ये सारे अवतार और रूप उत्पन्न होते हैं, वो हैं श्री कृष्ण, जो अपने गोलोक वृंदावन में निवास करके अपने आप को ऐसे विस्तारित करते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण के शरण को हमें ग्रहण करना चाहिए। श्री कृष्ण समय समय पर यहाँ आते हैं, सुंदर लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, उनके साथ हमेशा कोई न कोई भक्त होते हैं, चाहे वो मोर हो, चाहे उनके गाय हो। भगवान श्री कृष्ण का रंग कैसा है? सांवला है। विशेष करके जो वर्षा के मौसम में बादल का रंग होता है, जो नवीन बादल होता है, वो रंग भगवान श्री कृष्ण का है। भगवान श्री कृष्ण सर्व आकर्षक है। ये कृष्ण शब्द का तात्पर्य है। कृषि भूवाचक शब्द नश्च निर्वृतिवाचक तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। ये पुराणों का श्लोक है जिसमें कहा गया है कि कृष्ण और न, इन दो अक्षरों को जब मिलाया जाता है तो ये शब्द कृष्ण परम सत्य भगवान को संबोधित करता है। और इस शब्द कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षक, सबको आकर्षित करने वाले। यदि हमने भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना चाहा, हम भक्तों के संग में यदि आते हैं समय समय पर और भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं, उनके पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो अवश्य हमारा हृदय उनके प्रति आकर्षित हो जाएगा। लेकिन उनके प्राकट्य की कहानी ये तो बड़ी विचित्र है। इस दृश्य को आपने पहचाना होगा कि वो व्यक्ति जो हाथ में तलवार लिए हुए है वो कौन है? वो कंस है। कंस वास्तव में देवकी, जो कि कृष्ण की माता बनी, उनके भाई थे। परंतु जैसे अपनी बहन देवकी को देवकी के पति वसुदेव के घर में ले जा रहे थे, तो अचानक एक आकाशवाणी आई कि हे कंस, तुम बड़े मूर्ख हो, तुम इतने प्यार से तुम्हारी बहन को ले जा रहे हो उसके नए घर में, परंतु तुम नहीं जानते कि इसी लाडले बहन के 8वां पुत्र जो है वो तुम्हारी हत्या का कारण बनेगा। हालांकि कंस ने अपने बहन के प्रति बहुत प्रेम दिखाया, परंतु वो था एक असुर और असुर के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। कब असुर का मन बदल जाएगा, कब उसकी भावनाएं बदल जाएंगी कहना बहुत मुश्किल है। तुरंत कंस ने अपना तलवार उठाया और कंस और अपनी बहन देवकी की हत्या करना चाहा। किसी न किसी तरह से बड़े कठिनाई से वसुदेव ने कंस को रोका और ये वचन दिया कि जैसे जैसे मेरे बच्चे होंगे मैं इन बच्चों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, इसलिए तुम्हारे लिए कोई भी डर का कारण नहीं है। ऐसे 6 बच्चों की हत्या कंस ने कर दी। 7वें जो अवतार थे, जो गर्भ हुए माता देवकी की, वो बलराम जी थे। बलराम जी को स्थानांतरित किया योग माया ने उधर गोकुल में माता रोहिणी के गर्भ में, और श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए देवकी के 8वें गर्भ के रूप में। और जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो माता देवकी को कोई कष्ट नहीं हुआ। आप में से कई यहाँ पे माताएं हैं, आपने बच्चों को जन्म दिया है और आप जानते हैं कि बच्चे का जन्म देना कितना कष्टप्रद होता है, आपको कितना दर्द हुआ होगा जब आपने बच्चे को जन्म दिया। परंतु देवकी माता को कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म एक साधारण बच्चे की तरह नहीं हुआ। इस संसार में जैसे बच्चे का जन्म होता है वैसे श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। कि हे अर्जुन, जो तत्वतः भली भांति जान लेता है कि मेरा तथा कथित जन्म और मेरे तथा कथित कर्म ये लौकिक नहीं है, ये साधारण नहीं है, बल्कि ये दिव्य है, आध्यात्मिक है, ऐसे व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता बल्कि वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। और ये भी सोचिए, आपने कहीं भी ऐसे सुना है कि किसी बच्चे ने जन्म लिया है कपड़े पहन के, अपने पैंट शर्ट पहन के या कोई साड़ी पहन के? ये आपने कभी ये भी सुना है कि किसी बच्चे ने जन्म लिया अपने आभूषण गहने और बाल सहित? आपने ये कभी सुना है कि किसी बच्चे ने 4 हाथों से 4 भुजाओं से जन्म लिया है? तो इससे हम समझ सकते हैं कि जब भगवान प्रकट हुए तो वो माता देवकी और वसुदेव को बताना चाहते थे कि डरो नहीं, मैं तो भगवान हूँ, कंस मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं कम से निपट लूंगा, आप आराम से रहना, बिल्कुल निडर रहना, तुम मेरे भक्त हो इसलिए तुम्हें कोई चिंता नहीं है। फिर देवकी ने भगवान से कहा कि आप ऐसे चतुर्भुज रूप यहां धारण मत कीजिए, आप एक छोटे साधारण बच्चे का रूप धारण कीजिए। तो जब श्री कृष्ण ने छोटे बच्चे का रूप धारण किया और वसुदेव ने श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार उनको यमुना पार करके वो गोकुल ले गए। वहां पर बलराम जी ने अवतार लिया अनंत शेष का, वसुदेव और बाल कृष्ण की रक्षा करने के लिए। जिस प्रकार से समुद्र ने श्री राम को रास्ता दिया था जबकि वो लंका जाना चाहते थे, ठीक उसी प्रकार यमुना देवी ने वसुदेव और बाल कृष्ण को रास्ता दिया जिससे कि वो आसानी से यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। उधर गोकुल पहुंच के जब वो यशोदा माता की बेटी जो कि योग माया थी उनको वापस लेकर आए और कंस को पता चला कि देवकी के 8वें बच्चे का जन्म हो चुका है, तो वो तुरंत वहां पर आया। देवकी ने बहुत याचना की कि कम से कम इस बच्चे को तो छोड़ो, ये तो लड़की है। तो कंस कहने लगा कि अरे ये सही है, परंतु आकाशवाणी हुई थी कि 8वां बच्चा मेरे मृत्यु का कारण होगा, तो मुझे इस बच्चे को भी मारना होगा। जब कंस ने उस बच्चे को पकड़ा और मारना चाहा तो वो बच्ची कंस के हाथों से छूटकर ऊपर की तरफ जाके अपने अष्ट भुजाओं का रूप स्वीकार कर करके कहने लगी कि हे कंस, तुम बड़े दुष्ट हो। तुम इतना क्रूर क्यों हो? अपनी बहन देवकी को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? तुम नहीं जानते कि तुम्हारी हत्या करने वाले जो भगवान हैं, वो कहीं और जन्म ले चुके हैं। कंस ने देखा कि अरे, ये तो स्वयं दुर्गा देवी है, और दुर्गा देवी मेरे बहन के बेटी बनकर आई, तो मेरी बहन तो बहुत विशेष होगी। तो कंस घबरा गए। कंस ने बहुत क्षमा याचना की और कहा कि ठीक है, यदि ऐसा है तब क्या किया जाए? अब आकाशवाणी भी झूठ होने लगी है आजकल, अब क्या किया जाए? मैंने सोचा केवल मनुष्य लोग ही झूठ बोलते हैं, लेकिन अब देव लोग भी झूठ बोलने लगे। आकाशवाणी आई थी कि आठवां बच्चा जो है वो लड़का होगा और मेरी हत्या करेगा, लेकिन अब ये आठवां तो बच्ची है, लड़की है। तो कंस डर के मारे सो नहीं पाया, उठ नहीं पाया, सो नहीं पाया, जाग नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया। खाते, उठते, बैठते, सोते, पीते, वो हमेशा कृष्ण का स्मरण करता कि कब ये कृष्ण प्रकट होगा, वो मेरी हत्या करेगा, अब क्या होगा भविष्य में। उधर गोकुल में श्री कृष्ण प्रकट हुए, वहां नंद बाबा, माता यशोदा और अन्य ब्रजवासियों ने उनका अभिषेक किया, जैसे आज यहाँ हमारे मंदिर में भगवान के सुंदर रूपों का अभिषेक आपने देखा होगा। उनका उत्सव मनाया गया, जन्मदिन मनाया गया बड़े धूमधाम से। सारे ब्रजवासी आनंद के सागर में तैर रहे थे। सभी लोग बड़े आनंदित हुए कि इतने सालों के बाद नंद महाराज और यशोदा देवी को एक पुत्र हुआ है। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के लाडले पुत्र बन गए। जो आनंद उन्होंने माता यशोदा और नंद महाराज को प्रदान किया, वो माता देवकी को और वसुदेव को मथुरा में नहीं मिला, क्योंकि देवकी और वसुदेव श्री कृष्ण को भगवान मानते थे, परंतु नंद महाराज, माता यशोदा और जितने भी वृंदावन के अन्य निवासी हैं, वो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे। वो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते थे कि उनका प्रेम इस बात को ढक देता कि श्री कृष्ण भगवान हैं। और यदि कोई उनसे कहता भी कि अरे, तुम तो इसे साधारण बच्चा समझते हो, ये तो भगवान है, फिर भी वो कहते होगा भी तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो अपना लाडला बच्चा है। तो ये है वृंदावन की विशेषता। वृंदावन के भक्तों की जो भक्ति है वो इतनी मीठी है, इतनी तीव्र है कि वो भुलावे में डाल देते हैं भक्तों को कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण ने बचपन से ही वृंदावन में ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्य कर दिखाए। जब वो केवल एक महीने के थे, तब उन्होंने पूतना जैसे भीषण राक्षसी का वध किया और सारे ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे बड़े राक्षसी का वध इस छोटे बच्चे ने कैसे किया। फिर आगे चल के उन्होंने शकटासुर नाम के एक भयंकर राक्षस का वध किया। उस समय भी सारे ब्रजवासी गण आके देखने लगे कि अरे, कृष्ण तो बच गया और इतना बड़ा असुर यहाँ पे है, तो ये तो भगवान की कृपा है कि कृष्ण बच गए। वो नहीं जानते थे कि भगवान तो वही है, उनके सामने छोटे बच्चे के रूप में बैठे हुए हैं। एक बार भवंडर के रूप में एक असुर आया जिसका नाम था तृणावर्त। भगवान को ऊपर ऊपर आसमान की ओर ले गया। भगवान ने देखा कि अरे, ये असुर है, अच्छा, ये मुझे मारने चाहता है। तो भगवान भारी हो गए, हिमालय से भी ज्यादा भारी हो गए, सारे ब्रह्मांड से ज्यादा भारी हो गए, और इतना वजन तृणावर्त नहीं संभाल पाया। अपने गर्दन से छुड़वाने का प्रयास किया कृष्ण को, नहीं छुड़वा पाया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। सारे ब्रजवासी आवाज को सुनकर दौड़ के आए कि ये क्या हो गया, और देखा कि श्री कृष्ण उस भीषण राक्षस के ऊपर खेल रहा था, मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है। थोड़े दिन बाद गर्ग मुनि जो यदुवंशियों के कुलगुरु थे वो गोकुल में आए। नंद महाराज ने उनसे निवेदन किया कि इन दोनों बच्चों का आप नामकरण संस्कार कीजिए। तो गर्ग मुनि ने एक एकांत स्थान में गौशाला के भीतर इन दोनों का नामकरण किया। छोटे बच्चे का नाम रखा कृष्ण और बड़े बच्चे का नाम रखा बलराम। और कृष्ण ने अपनी लीलाओं को करना आरंभ किया वृंदावन में, बहुत मधुर मधुर लीलाएं। एक बार कृष्ण के मित्रों ने शिकायत की माता यशोदा से कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है, तो माता यशोदा को दुख हुआ, अभी ऐसे मिट्टी खाएगा तो कैसे चलेगा। उसको बुलाया कि कृष्ण तुम इतने शरारत क्यों करते हो, क्या तुम्हें यहाँ पर दूध मक्खन दही सब कम मिलता है कि तुम इस प्रकार से मिट्टी खाने लगे हो, क्या घर में हम तुम्हें खिलाते नहीं हैं? तो कृष्ण बोलने लगे कि मैंने तो नहीं खाई मिट्टी, ये षड्यंत्र रचाया है मेरे मित्रों ने। अच्छा, तो मित्र झूठ बोल रहे हैं, तो मैं देखती हूँ कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। तुम्हारा मुंह खोलो, मैं देखना चाहती हूँ कि वास्तव में तुमने मिट्टी खाई है या नहीं। तो श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया और माता यशोदा ने क्या देखा? माता यशोदा ने सारे ब्रह्मांड को देखा, जितने ग्रह थे, जितने नक्षत्र तारे सब थे, उन सब को माता यशोदा ने अपने लाडले बच्चे के मुख के भीतर देखा। माता यशोदा का सर चकरा गया, वो सोचने लगी कि क्या मैं सपना देख रही हूँ, क्या किसी ने मेरे ऊपर कोई जादू टोना किया है, या क्या मैं पागल हो गई हूँ, ये क्या देख रही हूँ मैं, क्या ये ऐसा संभव है कि मेरा बच्चा भगवान है। और जैसे ये विचार माता यशोदा के मन में आया, वैसे ही भगवान ने ये दृश्य निकाल लिया। और फिर से माता यशोदा सोचने लगी, अरे पता नहीं कुछ भ्रम हुआ होगा, ज्यादा थक गई होंगी इसलिए मन में ऐसे कोई विचार आ गया, अरे ये तो बच्चा है मेरा लाडला प्यारा कृष्ण कान्हा है, तो थोड़ी हमने कोई ब्रह्मांड देखा होगा, ऐसे थोड़ी संभव होता है। और फिर से कृष्ण एक साधारण बच्चे की तरह हंसने लगे, कृष्ण का काम पूरा हो गया, वो तो डांट से बच गए। माता यशोदा भूल गए कि वो मिट्टी के लिए वो परीक्षा करना चाहती थी। अब कृष्ण ने बड़े चतुराई से माता यशोदा को मिट्टी का जो घटना है उसको भुला दी। ऐसे श्री कृष्ण लीला करते रहते थे। और भगवान की माखन चोरी की लीला जो है ये तो बहुत प्रसिद्ध है। माता यशोदा हैरान हो जाती थी, बार बार गोपियां आती थी कृष्ण के पास, माता यशोदा के पास, कि आपका जो लाडला बेटा है वो बार बार हमारे घर में आके मक्खन चोरी करता है। और माता यशोदा कहती कि कृष्ण तुम ऐसा क्यों करते हो, मैं इतना दही मक्खन घर में रखती हूँ, क्या तुम्हें कम पड़ रहा है? तो कृष्ण कहते मैंने कभी चोरी नहीं की मक्खन की, ये लोग केवल झूठा आरोप लगा रहे हैं। तो पास में खड़ी हुई गोपियां जिन्होंने पकड़ा था कृष्ण बलराम को रंगे हाथ, वो कहने लगी हाँ ये तो ऐसे ही कहता है, जब हम रंगे हाथ पकड़ लेते हैं उसे और उसके मुख से दही और मक्खन गिर रहा होता है और हम उसे कहते हैं कि तुमने मक्खन चोरी की, बोलता नहीं तो मक्खन गिर रहा है तो तुम चोर हो, तो कृष्ण हमारी ओर देख के कहता है मैं चोर नहीं हूँ तुम चोर हो। इस प्रकार से कृष्ण कह के भाग जाता है। तो ऐसे शिकायत रोज वृंदावन में हुआ करती थी। हालांकि गोपियां आके शिकायत तो करती थी परंतु उनको बहुत अच्छा लगता था जब श्री कृष्ण आते थे और ऐसे सुंदर सुंदर लीलाओं को प्रदर्शित करते थे। और इतना ही नहीं, अपने मित्रों को बांट देते थे और कभी कभी बंदरों को भी बांट देते थे। और कभी गोपी उनको पकड़ लेती और कहते कि कृष्ण तुमने माखन को चोरी की, तो कृष्ण कहते कि अरे देखो मैं तुम्हारा मक्खन क्यों चोरी करने आया, और तुम्हारा मक्खन जो है वो स्वाद में इतना बुरा है कि बंदर भी नहीं खा रहे हैं। तो गोपी ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि स्वाद अच्छा नहीं है, तुमने खाया तब पता चला। तो इस प्रकार से ये माखन चोर की लीलाएं भगवान श्री कृष्ण किया करते थे। इसलिए माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम, माखन चोर के नाम से भगवान प्रसिद्ध हैं। हम यदि चोरी करेंगे तो समाज में हमारा अपमान होगा, हमारा नाम खराब हो जाएगा, हमें जेल जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान जब चोरी करते हैं तो हम गुणगान करते हैं, क्योंकि सारी संपत्ति तो भगवान की ही है। हम सब चोर हैं क्योंकि हम भगवान के स्वामित्व को मानते नहीं हैं। हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान की संपत्ति है। हमने केवल अज्ञानवश इन सब चीजों को अपना मान लिया है। ये मेरा धन है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा शरीर है, परंतु ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब भगवान श्री कृष्ण का है। तो यदि भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करना चाहते हैं या किसी और भी चीज को चोरी करना चाहते हैं, तो उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। कभी कभी भगवान ऐसे पकड़े जाते, और जब पकड़े जाते तो बड़े डर के अपने माता यशोदा के दंड से दूर होने के लिए, बचने के लिए वो भाग जाते। माता यशोदा एक साधारण गांव की महिला थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण जिनसे सारा संसार डरता है, जिनके डर से सूर्य चमकता है, चांद की रोशनी निकलती है, अग्नि प्रज्वलित रूप से जलता है, और जिनके डर से मृत्यु सबका पीछा करती है, वो कृष्ण माता यशोदा के डर से भागने लगे जब वो पकड़े गए। भगवान भी ऐसे लीला करना पसंद करते हैं। भगवान तंग आ जाते हैं कि जब लोग उनके पास बार बार आते हैं, भगवान मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए। लोग अपना शॉपिंग लिस्ट लेकर भगवान के पास जाते हैं, है ना? भगवान मुझे ये दीजिए, वो दीजिए। भगवान कहते हैं कि बहुत हो गया, अब सभी लोग मेरे पास आते हैं पूछने के लिए, अब मैं ऐसा रूप लूंगा कि मैं मेरे भक्त को पूछूंगा मुझे दो मुझे दो। तो वो एक बच्चे का रूप लेते हैं और अपने माता पिता को पूछते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अपने माता पिता के लाड प्यार को स्वीकार करते हैं, कभी कभी अपनी माता से डांट भी खा लेते हैं, और ऐसे डांट खाने में उनको बड़ा आनंद आता है। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे धन से, हमारे बल से, हमारी बुद्धि से, हमारी तपस्या से, हमारे प्रसिद्धि से बंध नहीं सकते हैं, परंतु भगवान कृष्ण माता यशोदा के प्रेम से बंधे गए। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि माता यशोदा ने श्री कृष्ण को केवल रस्सी से बांधा। कौन सी ऐसी रस्सी है सृष्टि में जो भगवान श्री कृष्ण को बांध सकती है? भगवान श्री कृष्ण बंधे गए केवल माता यशोदा के दिव्य और मधुर प्रेम के कारण। जब ऐसे बांधे गए, श्री कृष्ण ने उस बड़े उखल को खींचकर दो यमुलार्जन वृक्षों को नीचे उखाड़ दिया, जो बहुत बहुत बड़े वृक्ष थे, और सारे ब्रजवासी वहां आश्चर्यचकित हो गए कि ये दो बड़े पेड़ गिरे कैसे। उस समय कोई बड़े ब्रजवासी वहां पर थे नहीं, और जो बच्चे थे उन्होंने कहा कि हमने देखा कि जैसे ये दो पेड़ गिरे तो उनमें से दो ऐसे स्वर्ण रंग के सुंदर व्यक्ति बाहर आए। वो मुकुट पहने हुए थे और दोनों ने श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ा और वो कहने लगे, हम आपके शरण में हैं, हमारी ऊपर ऐसी कृपा करें कि हम पुनः कभी ऐसे अपराध नहीं करें और आपके हम अच्छे भक्त बने। भगवान श्री कृष्ण ने उनको भेज दिया वापस और कहा कि तुम चले जाओ अपने धाम में। ब्रजवासियों ने सोचा कि बच्चे लोग तो यूं ही बड़बड़ा रहे हैं, वो विश्वास नहीं कर पाए कि जो बच्चे बोल रहे हैं वो सच है। तो भगवान श्री कृष्ण एक बच्चे थे, भले वो दो बड़े वृक्षों को कैसे गिरा सकते थे, तो अपनी मधुर लीलाओं को करते करते भगवान कभी कभी अपने अद्भुत शक्ति का लेश मात्र प्रदर्शन कभी कभी किया करते थे, सबको याद दिलाने के लिए कि देखो मैं एक साधारण बच्चे की तरह लीला कर रहा हूं, लेकिन इससे ये नहीं समझना कि मैं एक साधारण बच्चा हूं, मैं तो स्वयं भगवान हूं, परम सत्य हूं। एक बार श्री कृष्ण ने देखा कि एक महिला फल बेचने के लिए आई है, तो श्री कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों में कुछ अनाज के दाने लिए, लेकिन चलते चलते वो अनाज के दाने गिर गए और उस महिला ने श्री कृष्ण का सुंदर चेहरा देखा और जितने भी फल थे उसकी टोकरी में वो सब दे दिए। और महिला ने जब अपनी टोकरी में देखा तो क्या देखा कि उसकी टोकरी तरह तरह के मूल्यवान रत्नों से भरी हुई थी। श्री कृष्ण जब धीरे धीरे बड़े होते गए, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ यमुना के तट में जाते और वहां पर साधारण बच्चों की तरह पिकनिक मनाते, अपने बच्चों के अपने मित्रों के साथ बहुत खेलते रहते थे। और मधुर मधुर लीलाएं वो करते रहते। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर लीलाओं को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, ब्रजवासी गण भी आए वहां पर, वो समझ नहीं पाए कि ये गाय वगैरह कृष्ण से इतना क्यों प्रेम करते हैं। कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य शक्ति का प्रदर्शन किया, नाना प्रकार के विष्णु रूप प्रकट किए। ब्रह्मा जी जिन्होंने कि उनके मित्रों को और ग्वालों को गवों को चोरी कर लिया था, वो आकर क्षमा याचना करने लगे श्री कृष्ण के। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता हैं, उनको भी पता चल गया कि श्री कृष्ण कौन है। आपने नाटक में देखा होगा कि इंद्रदेव कैसे भ्रमित हो गए थे श्री कृष्ण के बारे में, और यहां हम देख रहे हैं ब्रह्मा जी भी भ्रमित हुए। जब बड़े बड़े देवतागण श्री कृष्ण के बारे में भ्रमित हो जाते हैं तो हम जैसे साधारण मनुष्यों की बात ही क्या है। इसलिए हमें इंद्र ब्रह्म आदि ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण से, उनके अनुभव से जान लेना चाहिए कि श्री कृष्ण कौन है। हमें वही गलती नहीं करनी चाहिए जो उन्होंने की थी। भगवान श्री कृष्ण हमें कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे, कि हे अर्जुन मेरा भक्त बनो, सदैव मेरा स्मरण करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी उपासना करो और ऐसे निश्चित ही तुम मेरे पास लौटकर आओगे। ये भक्ति का पथ बहुत सरल है। आप सबसे निवेदन है कि यहाँ इस्कॉन के श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में ऐसे आध्यात्मिक सत्संग के कार्यक्रम होते रहते हैं, तरह तरह के उत्सव मनाए जाते हैं, यहाँ सुंदर भगवान के रूपों का दर्शन उपलब्ध है, भक्तों का संग यहाँ है। आप यहाँ पर आइएगा और दिव्य आनंद की प्राप्ति कीजिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास कीजिएगा। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव पर हमें श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे ऊपर ऐसी कृपा बरसाएं कि हम भी उनके शुद्ध भक्त बन जाएं। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, हमें भी श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर उनकी कृपा याचना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि आपकी सेवा में आप सदैव हमें लगाइए। हे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 12 बजने को आए, श्री कृष्ण का जन्म अब होने ही जा रहा है, तो आइएगा, अभी आरती होगी। आप कृपया जहाँ पर हैं वहीं पर रहिए, नहीं तो बहुत भीड़ हो जाएगी और भीड़ ने आप सबको खतरा है। तो जहाँ आप हैं आप उठिए और उठकर वहाँ भगवान की ओर आप देखिएगा।